नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा, सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए इस वर्ष ऐतिहासिक निर्णय लिए। देश के उत्तरी भागों में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, कोहरे और कम दृश्यता के कारण 148 उड़ानें रद्द। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के ढाका में हो रहे अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित तिथियों की घोषणा की और परीक्षा पे चर्चा की आगामी कड़ी के लिए 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज करके इतिहास रचा गया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा है कि इस वर्ष सरकार ने कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं जो विकसित भारत 2047 की दिशा में देश की राष्ट्रीय यात्रा में महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ते हैं। नई दिल्ली में कैलेंडर भारत एट 2026 लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि ये सुधार समावेशी विकास सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिरता बढ़ाने और देश के दीर्घकालिक विकास के लिए एक स्थायी आधार तैयार करने के स्पष्ट उद्देश्य से प्रेरित हैं।
The theme of this year calendar.
इस वर्ष के कैलेंडर का विषय भारत 2026 है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन और समृद्ध भारत के आत्मविश्वास से भरे क्षण के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह एक ऐसे राष्ट्र को दर्शाता है जो अपनी पहचान में सुरक्षित, अपनी संस्थाओं में मजबूत और अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण में स्पष्ट है।
इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि कैलेंडर का डिजाइन बहुत सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है और यह सरकार के प्राथमिकताओं को दर्शाता है और सरकार के संचार माध्यम के रूप में विकसित हुआ है।
इस कैलेंडर का डिजाइन बहुत सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है और यह वास्तव में सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। यह भारत सरकार के संचार माध्यम के रूप में विकसित हुआ है। यह मात्र तिथियों और छुट्टियों की एक सूची नहीं है, बल्कि सावधानी पूर्वक तैयार किया गया एक वृतांत है जो भारत सरकार की प्राथमिकताओं, मूल्यों और उस दिशा को दृश्य और विषयगत रूप से प्रस्तुत करता है जिस दिशा में हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ना चाहिए।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में मनरेगा सहित कई योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कल भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में श्री चौहान ने आरोप लगाया कि वित्तीय धोखाधड़ी के लगभग 10,653 मामले सामने आए हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के अंतर्गत जिन गतिविधियों की अनुमति नहीं मिली वहां अनियमित व्यय किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों ने शिकायत की है कि उन्हें उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। श्री सिंह ने दावा किया कि पंजाब की 13,304 पंचायतों में से केवल 5,915 पंचायतों का ही ऑडिट किया गया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि डीएमके शासित सरकार में नागरिक सुरक्षित नहीं है। राज्य में ओडिशा के एक व्यक्ति पर 4 नाबालिगों द्वारा किए गए कथित हमले का जिक्र करते हुए डॉ मुरुगन ने कहा कि महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों, श्रद्धालुओं और यात्रियों की कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी नशे की हालत में थे। डॉ मुरुगन ने कहा कि सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना राज्य सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी थी, लेकिन वे इसमें विफल रहे। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC डिजिटल कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाकर देश के ई कॉमर्स परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ONDC ने पिछले 4 वर्ष में सभी की भागीदारी को सक्षम बनाकर और नवाचार तथा सहयोग को बढ़ावा देकर उत्पादों और सेवाओं के ई कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2025 भारत के लिए सुधारों के वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। इस वर्ष विभिन्न सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए जिनसे देश की विकास यात्रा को गति मिली। सोशल मीडिया पर साझा लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने संस्थाओं को आधुनिक बनाया, शासन को सरल और सुगम बनाया तथा समावेशी विकास की नींव मजबूत की। श्री मोदी ने कहा कि श्रम कानूनों और व्यापार समझौते से लेकर साजो सामान, ऊर्जा और बाजार सुधारों तक भारत की विकास यात्रा विश्वसनीयता, स्थायित्व और भरोसे पर निर्मित रही है। श्री मोदी ने कहा कि इन कदमों से 2047 तक विकसित भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
साल 2025 अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, तो आइए इस वर्ष की उन प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें जिन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों को नया रूप दिया। साहसिक नीतिगत निर्णयों से लेकर दूरगामी सुधारों तक 2025 का सार एक शब्द में है, परिवर्तन। हमारे विशेष वर्षांत कार्यक्रम 2025 सुधारों का वर्ष में शामिल है 30 मिनट का गहन विश्लेषण, जिसमें उन विचारों, निर्णयों और परिणामों को समेटा गया है जो वास्तव में बदलाव लाए। कल रात 8 बजे केवल FM गोल्ड पर सुनिए इस वर्ष की उपलब्धियों की कहानी जिन्होंने भविष्य की नींव रखी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। खालिदा जिया का अंतिम संस्कार राजधानी के मानिक मियां एवेन्यू में हो रहा है। मानिक मियां एवेन्यू और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डॉ जयशंकर ने जातीय संसद भवन में BNPA के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को भारत का आधिकारिक शोक संदेश सौंपा। तारिक रहमान की बेटी जायमा रहमान सहित BNP के वरिष्ठ नेता और परिवार के सदस्य उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अयोध्या में राम मंदिर परिवार के भीतर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। अन्नपूर्णा मंदिर राम मंदिर परिसर के 7 मंदिरों में से एक है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण कार्य और औपचारिक समापन के उपलक्ष्य में भगवा ध्वज फहराया था। एक रिपोर्ट।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल है। आज परंपरागत विधियों से राम मंदिर परिसर में यज्ञ हवन और पूजन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संत महात्मा धर्माचार्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज परकोटा में बने अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी किया। आज राम भक्तों के साथ ही अयोध्या के लगभग 1200 संतों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इससे पहले अयोध्या पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मनाई जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसको आस्था और परंपरा का एक दिव्य उत्सव बताया। प्रधानमंत्री ने देश विदेश में फैले राम भक्तों की ओर से भगवान श्री राम को नमन किया। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम उच्च गति परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये परीक्षण कोटा नागदा रेलखंड पर किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पानी से भरे गिलास की स्थिरता का प्रदर्शन करने वाला वीडियो साझा किया। इसमें पानी से भरे गिलास तेज गति पर भी बिना छलके स्थिर रहे। ये इस नई पीढ़ी की ट्रेन की उन्नत सवारी गुणवत्ता, बेहतर सस्पेंशन और तकनीकी मजबूती को दर्शाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सफलता आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अंतर्गत नवाचार, सुरक्षा और स्वदेशी रेल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
परीक्षण के दौरान इस्तेमाल की गई 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर को लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार किया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए आरामदायक स्लीपर बर्थ, ऑटोमेटिक दरवाजे, आधुनिक शौचालय, सुरक्षा निगरानी प्रणाली, CCTV कैमरे और डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली शामिल है। इन सुविधाओं का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव देना है। परीक्षण के दौरान ट्रेन की तकनीकी जाँच की गयी। इस दौरान ट्रेन की स्थिरता, आपातकालीन ब्रेक, सुरक्षा प्रणालियाँ और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का मूल्यांकन किया गया। यह जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में हुई। तेज रफ्तार पर ट्रेन का प्रदर्शन पूरी तरह संतोषजनक पाया गया और रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने इस परीक्षण को सफल घोषित किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने उन पर गृह मंत्री अमित शाह को कथित तौर पर धमकी देने का आरोप लगाया है। अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में जनसभा में गृह मंत्री को धमकी दी थी। श्री पात्रा ने कहा कि उन्होंने न केवल गृह मंत्री का बल्कि पूरे देश की जनता का अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी राज्य में तानाशाही चला रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में पवित्र पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 19वीं शताब्दी में खोजे गए पिपरवा अवशेषों को गौतम बुद्ध से संबंधित माना जा रहा है, जिन्हें शाक्य वंश द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। मध्य प्रदेश में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। 35 से अधिक लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को पीड़िताओं को उचित और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन भी किया गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उपचार और जांच प्रक्रिया जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित तिथियों की घोषणा की है। CBSE के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षा जो पहले 3 मार्च को निर्धारित थी वो अब 11 मार्च को आयोजित की जाएगी। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा की तिथि 3 मार्च के स्थान पर अब 10 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने बताया कि प्रशासनिक कारणों से तिथियों में यह बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। कल तक 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भागीदारी का व्यापक स्तर परीक्षा पे चर्चा को एक सच्चा जन आंदोलन साबित करता है। देशभर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। देश के उत्तरी भागों में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। घने कोहरे के कारण आज रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली आने वाली 50 से अधिक रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं। कोहरे और कम दृश्यता के कारण आज 148 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इन उड़ानों में से 78 आने वाली और 70 जाने वाली थीं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज कड़ाके की ठंड और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। मुंबई पुलिस ने आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए पूरे शहर में व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।
तत्काल सहायता के लिए नागरिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 पर संपर्क कर सकते हैं। नए साल का जश्न मनाने वालों की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मुंबई मेट्रो रेल निगम और बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन ने घोषणा की है कि मेट्रो 3 एक्वा लाइन की सेवाएं और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बस सेवाएं आज रात भर संचालित रहेगी। यह विशेष सेवा आज रात 10:30 बजे शुरू होगी और 1 जनवरी 2026 को सुबह तक बिना रुके जारी रहेगी। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। नवीनतम सेंसेक्स 596 अंक बढ़कर 85,271 पर और निफ्टी 205 अंक की वृद्धि के साथ 26,144 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा, सरकार ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए इस वर्ष ऐतिहासिक निर्णय लिए। देश के उत्तरी भागों में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। कोहरे और कम दृश्यता के कारण 148 उड़ानें रद्द। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के ढाका में हो रहे अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित तिथियों की घोषणा की और परीक्षा पे चर्चा की आगामी कड़ी के लिए 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण करके इतिहास रचा गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।